माधव कुज बिहारी जय जय गोपी जराम बलम श्री
Thank you. ప్రభుపాదకి.
స్వయం విష్ణుపాద పరమహంస పరిభ్రాజిచార్య అష్టస్వరూపే శివస్తు సిద్ధాంత సరస్సు ఠాకూర్ మహారాజ్కి,
నామాచార్య శిల హరిదాస్ ఠాకూర్కి, అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి, శ్రీ రాధాగిరిధరి భగవానికి, జయ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రాజీకి, సమవేత భక్త బృందకి, శ్రీల ప్రభుపాదకి తగు ప్రేమ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో దయాన్మదీరయే నష్టప్రాయే సుభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమా శ్లోకే భక్తిర్భవతీ నైష్టికీ.
హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం పఠేంగి. క్యాంటో 10 అధ్యాయ 12 శ్లోక 19 बोलेंगे आप लोग तो पहले.
ओह मित्राणि गदत सत्वकुटं पर पुरस्थितं अस्मद संग्रसन व्याप्त व्याल అసత్ సంగ్రసన్ వ్యాప్త జాల తుండాయతే నవా. ఓహో మిత్రాణి గదత సత్వపుటం పురస్థితం అస్మత్ సంగ్రసన్ వ్యాప్త ్యాల తుండాయతే నవా. ఓహో మిత్రాణి గదత సత్వపుటం పురస్థితం అస్మత్ సంగ్రసన్ వ్యాప్త జ్యాల తుండాయతే నవా. மித்ராணிகுட்டம்
श्लोकों के शब्दार्थ ऐसे हैं मेरे पीछे बोलेंगे
ओहो
ओहो मित्राणी सारे मित्र हमें बताओ तो तत्व कुटम मृत अजगर पूरा स्थितम पहले से पड़ा हुआ अस्मत हम सबको संग्रसन निगलने के लिए व्याप्त व्याल तुंडाय थे अजगर ने मुख फैला रखा है न हुआ ये तथ्य है अथवा नहीं ट्रांसलेशन एंड कॉर्पोरेट डिवाइन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन बालक ने कहा मित्रों क्या यह मृत है या सचमुच यह जीवित अजगर है जिसने हम सबों को निगलने के लिए अपना मुंह फैला रखा है इस संदेह को दूर करो नो तात्पर्य सारे मित्र अपने समक्ष पड़े हुए उस अद्भुत जीव की सत्यता के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने लगे क्या यह मृत है या उन्हें निगलने का प्रयास कर रहा जीवित अजगर है
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सदाकया चक्षुर्निमिलितं येना तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुत पदकमल श्रीगुरवैष्णवश श्रीरूपं सागरजात सगन रघुनाथ नितं तं सजीव साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगन ललिता सिद्धिशाखानिपुण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पकरुभ्यश्च कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा तो भागवत के जो प्रसंग है अजगर की तो उसके पहले श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बकासुर की बद बताए थे बकासुर जो कि धोखा की प्रतीक है जो हमारे हृदय में एक अनर्थ है और कलयुग में धोखा या पाखंड बहुत बड़ा दुर्गुण है जितने हमें कृष्ण को धोखा देने के लिए प्रयास करेंगे उतने हमें अंधेरे में चले जाएंगे तो बकासुर के प्रसंग को कहने के बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने गोस्वामी पाद ने परीक्षित महाराज के सामने अघासुर प्रसंग को वर्णन करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो अघासुर प्रसंग को कह सुनाने के पहले तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की सुबह उठकर उनका क्या कार्यक्रम थी उसके विषय में थोड़ा कह रहे थे कहना चाह रहे थे तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण जल्दी सुबह उठ गए और उठकर अपने बिगुल बजाए बिगुल जो होता है सिंह में बनाया हुआ होता है और उसको अपने कमर में बांध रखते हैं। भगवान जब गो बछड़ा लेकर के जंगल जाते हैं तो गाय के सिंग में बना हुआ एक बिगुल वो अपने कमर में बांध रखते हैं। तो भगवान का एक दिन ऐसे इच्छा हुआ, तो क्योंकि भगवान स्वतंत्र है और कुछ लीला करने के लिए उनके मन में हुआ, तो अपने बिगुल को बजाए अपने मित्र की उद्देश्य से। क्योंकि जिसको जो उद्देश्य रख करके वो आवाज निकलती है तो वो उद्देश्य वो आवाज उनके पास पहुंचता है, मित्रों के पास पहुंचा, तो मित्र को बुलाना चाहते थे और किसी के पास नहीं पहुंचा, वो मित्र के पास पहुंचे और मित्र लोग भगवान के वो बिगुल का आवाज सुनकर उनके पास पहुंचे। कैसे? असंख्य, एक एक नहीं, सौ नहीं, हजारों नहीं, असंख्य संख्या में और किसके साथ? बछड़ों के साथ आकर के पहुंचे। और भगवान सारे अपने मित्र और बछड़ों को लेकर वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वृंदावन में जाते हैं और वहां पर अपने बालक स्वभाव को लेकर सारे मित्र लोग कुछ खेल करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई फूल तोड़ता है, कोई दौड़ता है, कोई कुछ आवाज निकलता है, बच्चों के स्वभाव को लेकर इस प्रकार का वो खेल कर रहे थे। तो खेलते खेलते अचानक जब इस प्रकार खेल रहे थे तो कंस के भेजा हुआ अघासुर, जो कि पुतना और बकासुर का छोटा भाई था, वो कंस के भेजा हुआ असुर था और ब्रज में प्रवेश किया। जब ब्रज में प्रवेश किया तो देखा, ब्रज में प्रवेश करते ही ब्रज की आनंद उनको सहा नहीं गया कि ब्रज ऐसे की जगह है वहां पर आनंद ही आनंद है, सच्ची आनंदमय विग्रह, भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान जिस प्रकार का सच्चिमय आनंदमय विग्रह है ठीक उसी प्रकार उनका धाम भी आनंद में परिपूर्ण है। धाम का नाम ले तो वो आनंद अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे ही ये बकासुर अघासुर ब्रज में प्रवेश किया तो भगवान श्री कृष्ण की ब्रजधाम, तो ब्रजधाम का आनंद देख करके उनके मन में इच्छा की अग्नि प्रज्वलित हुआ। जब देखा कि ये ब्रजनायक, ये सारे वैष्णव की जो पुरथा नेता, ये सारे वैष्णव का जो नायक है, वो बड़े खुशी में, बड़े आनंद में और उनके भक्त लोग भी बड़े खुश में। अब ये बौद्धिक संसार में ये पहली स्थिति है जब ईर्ष्यालु आसुरी स्वभाव के लोग भगवान और भगवान के भक्तों की आनंद को देखते हैं तो उनके लिए वो सहा नहीं जाता, वो सह नहीं पाते। भक्तों की आनंद और भगवान का खुशी वो ईर्ष्यालु असुर स्वभाव के लोगों को वो खुशी सहा नहीं जाता। तो ये बकासुर जैसे ब्रज में प्रवेश किया तो वही बात उनका पहले नजर में आया, वही बात को पहले देखे, ये अघासुर पहले ये देखा कि कृष्ण कितने खुश है और उनके भक्त लोग कितने खुश है। जो उसके खुशी देखा तो उनके भीतर ईर्ष्या उत्पन्न हुआ और तुरंत उनको स्मरण हो आया, याद हुआ कि ये उसको समझ में आया ये जो लड़का है, ये जो बालक है, ये ही कृष्ण है, उन्होंने मेरा बहन और मेरा भाई को मारा है, पुतना और बकासुर को मारा है, तो मैं यदि उनको मार दूं तो मेरे बहन और मेरे बहन और भाई का दिगमन आत्मा को शांति प्राप्त होगा ना, उसको यदि मैं मार दूं तो मेरा बहन और भाई को शांति प्राप्त होगा इस सोच पर, तो और उसके साथ साथ उनका भक्तों को भी मैं निगल जाऊंगा, ये सोचकर एक बहुत बड़ा असुर लोग हैं, असुर लोग को ऐसे कुछ योग विद्या मालूम होता है और योग की शक्ति से वो कुछ भौतिक जगत में कुछ चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन छोटे बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले लोग ये आसुरी जादूगरी से प्रभावित हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु जैसे बहुत बड़े बड़े राक्षस लोगों की बहुत बड़े योग शक्ति था, तो योग शक्ति के द्वारा वो बहुत बड़ी चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन जो लोग अल्प बुद्धि के हैं तो आसुरी चमत्कार में वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये अजगर था, असुर था, अपने को बहुत बड़ा अघासुर था, ये असुर अपने शक्ति के द्वारा एक बहुत बड़ा अजगर सांप के रूप में विस्तारित किया और ये सांप ब्रज में लेटे रहा कि कहाँ तक? 8 मील तक। भाग्य है वो ब्रज में आकर के अपने आसुरी शक्ति को दिखाया, हाँ, उसका कल्याण ये है कि ब्रज में आया और किधर नहीं गया। हाँ, इसीलिए भगवान के द्वारा उनका सदगति हुआ, यदि और किधर होता तो दुर्गति होता। तो ब्रज में आकर जब इस प्रकार का अपने योग शक्ति का दिखाया और 8 मील तक अपने शरीर को फैला रखा, तो सारे ग्वाले वाले जब खेल रहे थे तो वो देखे, अरे ये क्या है, ये ब्रज में पहली बार ये अद्भुत जीव को हमें दर्शन कर रहे हैं। ये कौन, ये एक पहाड़ की गुफा है, ना कोई सांप है, ना मृत है, ना जीवित है, कुछ वो जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। भगवान के जो मित्र लोग थे ग्वाले वाले वाले, तो वो समझ ही नहीं पा रहे ये जीव है क्या। उनको बड़े आनंद आए। अरे भगवान जो दिन ब्रज बालकों को लेकर के ये अघासुर का वध करने के लिए, अघासुर लीला को करने के लिए वृंदावन में प्रवेश किए थे, वन में प्रवेश किए थे, तो उसी दिन वहां पर उल्लेख नहीं है, यहाँ पर कहा नहीं गया, श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर उल्लेख नहीं किए कि वो दिन शायद ये बलराम जी उनके साथ नहीं गए, कि जहां पर अनंत होता है ये छोटे मोटे सांप अनंत के सामने क्या है, बलदेव कौन है, बलराम कौन है, वो अनंत है। हाँ, तो अनंत के सामने ये छोटे मोटे सांप वो टिकते नहीं है, तो लगता है यहाँ पर उल्लेख से पता चलती है कि वो दिन ये बलराम नहीं गए थे भगवान के साथ। ये बात भी और उसको पुष्ट करता है कि ये अजगर लीला के बाद ही ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, जो दिन ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था वो दिन बलराम जी भी नहीं गए थे। तो लगता है अजगर लीला के दिन, अजगर लीला जब अघासुर का लीला जो दिन भगवान ने किए, तो वो दिन भगवान ना सॉरी बलराम नहीं गए थे। तो भगवान देखें ये सांप है, और प्रभुपाद जी भी ये संसार में बहुत बड़े बड़े जहरीला सांप को हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उनका जहरीला दांत को तोड़ करके रख दिया, और आगे जाकर के भगवान भी काली और नाग काली सांप को भी शासन किए। इसी अवसर पर ये मामला पर एक बात याद आती है कि एक बार गौरकिशोर बाबू जी महाराज भजन कर रहे थे, जहां पर भजन कर रहे थे उस समय वो दृष्टिहीन लीला का अभिनय कर रहे थे, तो अपने कुटिया में बैठ करके भजन कर रहे थे, अचानक एक सांप आ गया उनका कुटिया के भीतर, और जहां पर बाबाजी महाराज के लिए कुछ प्रसाद रखा गया था तो कोई वो जगह हो करके वो सांप निकल गया। तो अचानक वहां पर एक माता जी खड़ी थी, बहुत जोर से चिल्लाने लगी, ए बाबूजी महाराज आपके कुटिया में सांप है, सांप है, सांप है। हाँ, तो बाबा जी महाराज अपने सेवक को बोले, तो ये माता जी गए कि नहीं, तो उनके सेवक बोले माता जी हैं। तो माता जी चिल्ला रही थी, महाराज आप ये जो प्रसाद है नहीं खाना, वही वो करके वो सांप निकला है, लगता है सांप ने वो प्रसाद में मुंह लगाया हुआ, तो आप यदि खाओगे आपको कुछ हो जाएगा। तो महाराज बोले ठीक है मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा वो तो जो करूंगा, लेकिन आप जाइए। तो माता जी जीत कर रही थी, नहीं आप पहले वो प्रसाद को फेंको, जब तक नहीं फेंकोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो बाबा जी महाराज बोले जब तक आप नहीं जाओगे मैं तब तक कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। इस प्रकार जो गौरकिशोर बाबा जी महाराज बोले, तब माता जी तो जो थी वो चली गई। तो बात चले जाने के बाद महाराज पूछे अपने सेवक को, माता जी गए? तो सेवक ने बोला हाँ। तो बाबा जी महाराज कह रहे हैं देखो माया किस प्रकार के बन करके हमारे सामने हमारे भजन को नष्ट करने के लिए आती है। यहाँ पर ब्रज के बालक लोग भी जो भगवान के भक्त है वहां पर उनके पार्षद लोग भी जान नहीं पाए, ये अजगर का रहस्य को जान नहीं पाए, असुर का रहस्य को जान नहीं पाए। तो ये जो अघासुर है, अघ मतलब घोर पाप, अघ मतलब घोर पाप, असुर मतलब ये असुर जो था घोर पाप की प्रतीक था, और ये सांप क्या था, सांप सर्पजोनी जो होता है, घोर पाप अत्यंत पाप करने से एक जीव को सर्प शरीर मिलती है। जब एक जीवात्मा अनेक अनेक जघन्य पाप कर लेता है तब जाके उनको एक सर्प का शरीर प्राप्त होती है, और सर्प शरीर जो होती है घोर तमोगुण कहते हैं, घोर तमोगुण में ये सांप होते हैं। और यही बात को कौन कहते हैं, जो कालिया की पत्नी, जब भगवान कालिया को दमन कर रहे थे, यही बात कहते हैं कि प्रभु घोर तमोगुण के कारण, अनेक पाप के कारण ये कालिया को सर्प जोनि प्राप्त हुआ, तो पता नहीं ये कालिया ने पिछले जन्म से कौन क्या क्या पुण्य किया था जो चरण कमल को आपने बड़े बड़े महात्मा को नहीं दिए, आप ये कालिया को दे दिए, ये कौन सा कितना पुण्य कर्म किया था। हाँ, कि उसी प्रकार भले हमें कपड़े बदल लिए हैं, लेकिन ये सर्प जैसे स्वभाव हर व्यक्ति के भीतर ही है। सांप का काम क्या है? ईर्ष्या करना। भले उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए, भगवान उसको इसीलिए छोड़ दिए थे, उन्होंने ब्रज धाम का आश्रय लिया था, अपने जीवन को बचाने के लिए कालिया ने ब्रज का आश्रय लिया था, भले धाम का आश्रय लिया था, लेकिन अपनी जो स्वभाव है उस स्वभाव को छोड़ नहीं पाया था, इसीलिए हमेशा इच्छित रहता था, ब्रजवासियों को इच्छा कर रहा था। ठीक उसी प्रकार भले हमें कपड़े बदल लिए हैं, भक्त हो गए हैं, कपड़े बदल लिए हैं, लेकिन हृदय इतना जल्दी बदलता नहीं है। अनेक जन्मों से हमें संग किए हैं, अभी भी हृदय में कुछ चाहिए, कुछ रस चाहिए, लेकिन मन के द्वारा उनको समझाना पड़ता है, बस करो और नहीं। इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, बस बस रहो, मारो पीटो जो भी कुछ करो आपके शरण में रखो, आपका माया में और हमें जाना नहीं है। आपका माया में और हम जाना नहीं। तो आप लोग प्रभुपाद जी बात के ऊपर कहते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में एक बार प्रवचन कर रहे थे तो उनके शिष्य लोग ऐसे बैठे थे, तो प्रभुपाद जी बताते बताते बता दिए कि आप लोग भाग्यवान हो, क्योंकि आप लोग कृष्ण से भले 300 फीट दूर हो लेकिन आप कृष्ण की तरह चल पड़े हो। लेकिन भारतीय लोग कृष्ण से 3 फीट दूर है, आप लोग 300 फीट दूर है, फिर भी आप कृष्ण की ओर चल पड़े हो। ये भारतीय लोग कृष्ण से 3 फीट दूर है, लेकिन कृष्ण से आज वो लोग दूर जा रहे। तो भाग्यवान कौन है? भले कार्यों को भाग्य मिला था, भले हमें भक्त होने की भाग्य मिला है, लेकिन जो हमारे स्वभाव है, अनेक जन्मों से जो बना हुआ आदत है, इतना जल्दी जाता नहीं है। आप लोग देखे होंगे ये बौद्धिक संसार में जो खेकड़े देखे हैं, खेकड़े, ये खेकड़े जो क्या करते हैं, एक खेकड़ा जो ऊपर उठता है ना, 5-10 खेकड़े उसको पकड़ करके घुस उतार के उस नीचे गिरा देते हैं। भौतिक जगत के ऐसे ही भौतिक संसार के लोगों की स्थिति है, एक खेकड़ा जब उठता है, ऊपर उठता है 5-10, उसको घुसाड़ के फिर नीचे गिरा देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक संसार में जब कोई ऊपर उठना चाहता है तो कुछ लोग उनको टान उतार के नीचे पटक देते हैं। ये भौतिक जगत की स्थिति है। निज सुख भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बात बताते, निज सुख लागी पापे नहीं डरी, अपने सुख के लिए दूसरों को कितने भी हानि पहुंचे, कितने भी कष्ट हो, उसकी कोई परवाह नहीं होती है। एक व्यक्ति बेताल जी को पा सकते हैं तो दूसरे पड़ोसी का सुख को देखते थे, यही होता है। पड़ोसी का सुख जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय में आग लग जाती है, उसके घर में कलर टीवी कैसा आ गया, हमारे घर में नहीं है, कैसे आया, किस प्रकार का आया, उसका हमें पूरा एकदम क्या करते हैं, पूरा एकदम उनको खोज निकालते हैं, उसका पीछे पीछे चलते हैं, कैसे आया, कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, इतने बात चलते हैं, हमारा पूरा जिंदगी इसी में चला जाता है, हमारा पूरा माइंड एंगेज रहे, मन पूरा एंगेज रहता है, वो क्या क्या, वो क्या क्या, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे, पूरा हमारा दिमाग पूरा एंगेज, मन हमारा एंगेज रहना चाहिए भगवान का भक्ति में, लेकिन वो क्या किया, उसके पास ऐसे कैसे हुआ, कैसे आया, इसी मामले में हमारा पूरा दिमाग एंगेज रहता है, और इसी यही करते करते हमारा पूरा जिंदगी निकल जाती है, पूरा जीवन ये व्यापार में निकल जाती है, अपनी भक्ति कहाँ करेंगे। हमारा माइंड को, हमारे मन को वो छोटा क्या कर दिया तो उसी में हमारा सारा दिन निकल जाता है। अपने बात को पूरा सत्य बनाने के लिए, वो सही नहीं है, मैं सही हूं, ये बात को साबित करने के लिए पूरा हमारा माइंड लगा देते हैं। तो इस नाम इस अवस्था में जो सब सच अच्छे भक्त होते हैं, बस आप सही हो, उसे हाथ जोड़ लेता है, आप जो कह रहे हो वही सही है, मैं गलत हूँ, जब इस प्रकार कहता है तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, तो वो गलत सही मामले में अपना माइंड को नहीं लगाएगा, फिर वो अपने माइंड को भगवान का भक्ति में लगाएगा। तो ये सच्चे भक्तों की लक्षण है, इस प्रकार का सामने वाला को, सामने वाला का मन को कैसे भगवान में लगाना। तो व्यक्ति पड़ोस का सुख को देख करके उनको बहुत जलन होता था। तो जब एक व्यक्ति किसी को ईर्ष्या करता है तो उसका तो कोई हानि नहीं होता है, ईर्ष्या करने वाला का सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो ईर्ष्या अग्नि के द्वारा वही खुद ही जल जाता, नष्ट हो जाता, नष्ट हो जाता। भगवान कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह इसका कोई इलाज है, लेकिन ईर्ष्या ऐसे की बीमारी है जिसके हृदय जिसको लग गया है तो छोड़ना मुश्किल है। ईर्ष्या का कोई प्रतिकार नहीं है, ईर्ष्या का विनाश ही है, ईर्ष्या का विनाश। काम है हमारे भीतर तो भगवान की सभा में लगे काम को हमें मोड़ सकते हैं, लोभ है क्रोध है उनको हम भगवान की सभा में इस्तेमाल करके उनको कर सकते हैं, कुछ शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या ये चीज ऐसा है कि तो उनको हमें भगवान का वहां पर कोई लगा नहीं सकता। तो व्यक्ति जो पड़ोस का सुख को देखता था उनको बहुत कष्ट होता था, बहुत जलन होता था, वो घर के भीतर जाता था और बेताल जी को बेताल जी का मेडिटेशन करता था, मेडिटेशन करके बेताल जी कहता था ए वो बेताल जी हाँ मेरा दो मंजिल वाला मकान बना दीजिए, तो बेताल जी उनको तथास्तु कहते थे, दो मंजिल वाला मकान हो जाता था। तो दो मंजिल वाला मकान हो जाता था तो तुरंत घर से निकल करके अपने पड़ोस को दिखाने के लिए जाता था, देखो मेरा दो मंजिल वाला मकान बन गया। तो जब दो मंजिल वाला मकान दिखाने के लिए पड़ोस को दिखाने के लिए बाहर निकल जाता था तो क्या दिखता था, अरे मेरा पड़ोस का तो चार मंजिल वाला मकान बन गया, उसका दो है लेकिन वो उसका दुगुना हो गया। हाँ, वो देख करके ओ और उसका ईर्ष्या बढ़ता था और उनको तकलीफ होता था, उसको जलन और बढ़ जाता था, वो उसका तो चार मंजिल वाला हो गया, हाँ मेरा दो उसका चार कैसे हो गया, क्या क्यों हुआ। तो फिर घर के भीतर जाता था, मेडिटेशन करता था, ओ बेताल जी मेरा चार वाला बना दीजिए, तो चार वाला उसका देखता तो आठ वाला बन गया और उनका तकलीफ हो जाता। तो ये सोच करके वो एकदम शांति में बेचैन होता था, अशांत होता था, बहुत कष्ट होता था उसको। ईर्ष्या करने वाला कहाँ शांति मिलेगा उसको, कहाँ वो, हाँ तो बड़े कष्ट होता था। फिर क्या करो, क्या करने से उनको दुख मिलेगा, ये पूरा एकदम चिंतन मनन करता था। तो एक दिन वो घर के भीतर गया, घर के भीतर उनका मन कोई बात सुझा, घर के भीतर जाके सोचा, हाँ ऐसा सोचा और बेताल जी को बुलाया, ओ बेताल जी मेरा एक आंख काना कर दो। देखो भले अपने कुछ हो जाए, अपना बर्बाद हो जाए, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं, ये भौतिक स्थिति है, ये भौतिकवादियों का दिमाग। हाँ तो क्या कहा, वो बेताल जी मेरा आंख एक आंख काना कर दो। तो बेताल जी आए उसका एक आंख काना कर दिया, तो एक आंख काना हो गया तो पड़ोस के घर में जाकर देखा पड़ोस वाला का दो आंख काना हो गया, उसका तो एक आंख काना हो गया था लेकिन पड़ोस में जब जाकर देखा पड़ोस का दो आंख काना हो गया। इतने अभी वो जब देखा पड़ोस का दो आंख काना हो गया, ओ अभी आनंद आ गया, अभी मजा आ गया, हाँ अभी खुश हो गया, इतने दिनों से बहुत कष्ट हो रहा था, हाँ आनंद नहीं आ रहा था, जब पड़ोस का दो अंक काना हो गया तो अब उनको बहुत खुशी हुआ। हाँ इस प्रकार ये भौतिक जगत की स्थिति है। हाँ एक जगह में एक व्यक्ति कहते हैं जब ब्राह्मण को भोजन मिल जाती है वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ जो मोर बादल की गर्जना सुनती है उनको बड़ा प्रसन्नता होती है। सज्जन व्यक्ति जब दूसरों को संपन्न और सुखी देखता है उनको बहुत खुशी होती है, लेकिन दुष्ट आदमी जब देखता है सामने वाले को विपत्ति में पड़ा हुआ देखता है तो उनको बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी हो जाता है। प्रभुपाद जी ये मामले में हाँ बताते हैं, प्रभुपाद जी ये मामले में ना वो जगह पे हाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के जो सदस्य है हाँ ऐसे ईर्ष्यालु लोगों के द्वारा सताया जाता है। कुछ दिन पहले हमें भगवान नरसिंहदेव का प्राकृत्य तिथि मनाए, तो भगवान वहां पर ना युधिष्ठिर महाराज वहां पर बताते हैं जब कोई व्यक्ति भक्तों की ईर्ष्या करता है हाँ तुरंत उनका नाश हो जाता है, तुरंत उनका आयु ऐश्वर्य शक्ति सौंदर्य सब कुछ खत्म हो जाती है। यदि भगवान नरसिंहदेव कहे नहीं थे मैं कब प्रकट होगा ये विवरण नहीं ये बताए नहीं थे, लेकिन ये कहे थे जब मेरा भक्त के प्रति ईर्ष्यान्वित होगा तब मैं प्रकट होगा और उसको मार दूंगा। प्रहलाद द्रुहत, द्रुहत मतलब सताएगा, कष्ट देगा हनिष्य, मैं उसको मार दूंगा, हनिष्य मतलब मैं उसको मार दूंगा। अपि बर अर्जितम, भगवान कहे दुष्ट मारना नारद जी कहते हैं कि भगवान ये कहे थे जो दिन मेरा भक्त को सताएगा उसी दिन मैं प्रकट होकर के हनिष्य मैं उसको मार दूंगा। अभी बड़ा अर्जितम, यदि वो अनेक बार प्राप्त किया है लेकिन इतने बार प्राप्त होने के बाद भी मैं मार दूंगा। कि भक्त लोग निर्बेर होते हैं, निर्बेर मतलब वो कोई किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखते, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। यही बात के ऊपर गोपाल जी भी कहते हैं, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो सदस्य है ये प्रहलाद महाराज के प्रहलाद महाराज की जैसे स्थिति है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो सदस्य है वो प्रहलाद महाराज की स्थिति के जैसे ही है। सारे विश्व में यहाँ 99% लोग ईश्वर भी असुर है, और प्रहलाद महाराज का अनुसरण कर, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रहलाद महाराज के अनुसरण करते हुए हमारे जो प्रचार कार्य है नाना प्रकार का अवरोध में ग्रस्त है। जिन अमेरिकन बालकों ने कृष्ण भावनामृत प्रचार करने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व बलि दे दिए, ऐसे लोगों को भक्त होने के दोष में CIA दोष लगाया जाता है, सदस्य कहा जाता है, CIA का सदस्य कहा जाता है। और ये भारत के ब्राह्मण लोग ये दावा करते हैं जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तब उसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाता है। और प्रभुपाद जी के ऊपर हिंदुओं के धर्म को नष्ट करने की दोष लगा आरोप किया जाता है। इतने सारे ये सब होने के बावजूद भी प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब होने के बावजूद भी अनेक कष्ट के सम्मुखीन होने के बावजूद भी हमें दृढ़ संकल्प होकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। ऐसे हिरण्यकशिप जैसे ईर्ष्यालु असुरों के द्वारा हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। जब भक्त लोग हिमालय के गुफा में बैठ करके अपने साधन भजन में लगे रहते हैं तब तक उनको कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन जैसे वो शहरों में आकर के गाँव में आकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने लग जाते हैं तो बेमतलब ईर्ष्यालु लोग उनका समालोचना करने लग जाते हैं। ये ऐसे 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 कोई कुछ काम का नहीं है यही कर रहे हैं तो उनका निंदा करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक हाथी जब सड़क में जाता है तो हाथी को देख करके कुत्ते लोग भय भय करते हैं, लेकिन हाथी वो कुत्तों का कुछ नहीं करता है, कुछ अनिष्ट नहीं करता, अपने रास्ता में चला जाता है, किसी का हानि न पहुंचाते हुए चला जाता है। लेकिन कुत्ते लोग बेमतलब हाथी के पीछे भौं भौं करते हैं, लेकिन हाथी कुत्तों के भय में विचलित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार भक्त लोग जब कृष्ण भावनामृत का संदेश को प्रचार प्रसार में भगवान के कथा कीर्तन में लग जाते हैं तो ऐसे ही वो कोई ईर्ष्यालु व्यक्तियों के द्वारा वो ईर्ष्यालु व्यक्तियों के बातों में बातों को भ्रूक्षेप नहीं करते, वो ऐसे वो लोगों के समालोचना के ऊपर वो विचलित नहीं होते हैं। तो सांप का जो जब ये अजगर नागासुर ब्रज में प्रवेश किया तो सारे भक्तों के और भगवान के खुशी को देख कर जब ईर्ष्यान्वित हो उठा तो उसको देख करके ऐसे एक अद्भुत जीव को देख करके ये भक्त लोग खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए। बहुत बड़ा अच्छा जगह मिला हमें पिकनिक मनाने के लिए, खेलने के लिए, वो जान नहीं पा रहे थे ये क्या है। तो उनको ऐसा लगा ये कि बहुत बड़ा अच्छा जगह है, पहाड़ की गुफा है, रमणीय स्थान है, तो वहां पर बैठ करके हमें खुशी करेंगे, आनंद करेंगे। ये लोग खुशी हो रहे थे अजगर को देख करके, लेकिन अजगर वो लोग को देख करके ईर्ष्या में जल रहा। कि हर एक व्यक्ति का अपने अपने अलग अलग स्वभाव होती है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो वस्तुओं का दर्शन करता है। एक एवं पदार्थस्तु त्रिधा भवति विक्षित गुणप कामिनी मांस योगी भी कामी भी सो भी। एक व्यक्ति जब एक कुत्ता जब एक स्त्री को देखती है तो वो कुत्ता क्या सोचता है, ये मेरे लिए एक मांस है, ये खाना है, मांस की टुकड़ा है। और जब एक कामी व्यक्ति देखता है अपने कामी काम भावना के अनुसार वो अलग देखता है, जब योगी देखता है तो ये तो मेरे लिए सब है, सब योगी भी कामी भी सो भी। कैसे ये तीनों लोग एक पदार्थ है लेकिन देखने की नजर अलग हो जाती है। योगी जब वही चीज को देखता है योगी क्या देखता है, ये मेरे लिए सब है, सब समझते हैं डेड बॉडी, हाँ ये मेरे लिए सब है। अरे जो कामी देखता है वो अलग देखता है, और सो भी, और जो कुत्ता देखता है तो वो क्या देखता है, ये मेरे लिए के मांस है। होती जगत में हाँ हर व्यक्ति अपने अपने नजर के अनुसार हर वस्तु इस प्रकार का देखते हैं। इसलिए एक जगह पर कहा गया है कि बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर रहो और घोड़ा गाड़ी से, घोड़ा से 10 हाथ दूर रहो, हाथी से 100 हाथ दूर रहो, लेकिन दुष्ट व्यक्ति से सदा सदा के लिए दूर रहो। तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ कहानी पहुंचा सकता है। इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी कहे थे, सांप को दूध पिलाना जिस प्रकार घातक है, कि असुरों को वर प्रदान करना इस प्रकार घातक है, क्योंकि दोनों क्रूर और ईर्ष्यालु है। इसलिए आगे चलकर कोई असुर स्वभाव के लोगों को वर प्रदान नहीं करना, भगवान ने ब्रह्मा जी को सचेत किए थे, साधन किए थे कि आगे जाकर असुरों को इस प्रकार का वर नहीं देना। चैतन्य देव जब ये जगत में अपनी लीला प्रकट कर रहे थे, ठीक उसी समय सुबुद्धि राय करके महात्मा है, और इस सुबुद्धि राय के साथ एक बांग्लादेश से, बांग्लादेश के एक हुसैन खां करके एक व्यक्ति उनके पास रह करके काम कर रहे थे, और इस सुबुद्धि राय एक तालाब खोद रहे थे, और तालाब खोदने में वो हुसैन खां को लगाए थे, काम देखने के लिए लगाए थे, और ये हुसैन खां आगे जा करके बांग्लादेश के बादशाह बन गए थे, हुसैन शाह बन, हुसैन खां से हुसैन शाह बन गए, बादशाह बन गए थे। लेकिन सुबुद्धि राय के पास जब थे तो सुबुद्धि राय के नियंत्रण में रह करके वो काम कर रहे थे, सुबुद्धि राय के पास रह करके काम कर रहे थे। जब सुबुद्धि राय ने उनको तालाब खोदने में काम में लगाए थे, वो अपने काम में कर्तव्य में थोड़ा ढीला कर रहे थे, तो ये देख करके सुबुद्धि राय के बैच लेकर के उनको पीटे थे, उनका पीठ में पीटे थे। तो आगे जाकर के हुसैन खां जब हुसैन शाह बन गया, तो एक दिन उनका पीठ में वो हुसैन शाह का पत्नी, उनका हुसैन शाह का जो बेगम थी वो देख ली, उनके पति के पीठ के पीठ में कुछ मारा हुआ पिटाई का चिन्ह है, वो तो पूछे अपने पति को ये कैसे हुआ। तो सुबुद्धि ना हुसैन बादशाह बोल दिए कि मैं, मेरे जो मालिक थे, पहले के मालिक थे सुबुद्धि राय, उनके पास जा करके जब मैं काम कर रहा था तो काम में थोड़ा ढीला कर रहा था, तो वो देख करके वो थोड़ा मुझे पीटे थे। तो जैसे सुने तुरंत वो बेगम ने आदेश दे दिए अपने पति को, तुरंत ये सुबुद्धि राय को फांसी दिया जाए। लेकिन बादशाह ने राजी नहीं है, तो बोले वो मेरे प्रभु है, पहले मैं उनके पास खाया हूँ, उनके पास बढ़ा हूँ, भले मुझे पीट रहे थे लेकिन स्नेह भी कर रहे थे, मैं उनको मृत्युदंड नहीं दे सकता। तो ये सुन करके बेगम ने कहा, ठीक है आप यदि उनको मार नहीं सकते, उनका जाति को भ्रष्ट कर दो। पहले समय में ऐसा हुआ था, तो मुस्लिम लोग जब कोई हिंदुओं के ऊपर पानी छिटक देते थे तो हिंदू लोग मुस्लिम बन जाते थे। तो बेगम ने कहे, ठीक है आप उनको प्राण दंड नहीं दे सकते, तो कम से कम उनका जाति से उनको भ्रष्ट कर दो, पानी डाल करके उनका जाति चित्त कर दो। लेकिन फिर भी वो बादशाह राजी नहीं हो रहे थे, तो बेगम ने आत्महत्या की धमक दी, कहा यदि आप ये कार्य नहीं करोगे मैं आत्महत्या कर दूंगी। तो इस प्रकार का सुने तो फिर सुबुद्धि राय को जाति भ्रष्ट करा दिया गया, और जब जाति भ्रष्ट हो गए तो बड़े दुखी हो गए और काशी में गए। काशी में जाकर काशी के पंडित लोगों को पूछे, तो काशी के वहां पर बनारस के पंडित लोग कहे, तो आप गरम गरम घी पी करके शरीर छोड़ दो। इस प्रकार का जब वहां पर सलाह मिली, तो कोई आत्मा की कल्याण के लिए कोई कुछ नहीं बता पा रहा था, तो बड़े दुखी होकर के इधर उधर घूम रहे थे। जिस प्रकार ये बेगम ने तो अपने पति का अपमान का दंड देने के लिए प्राण दंड की व्यवस्था की, ठीक उसी प्रकार काशी में जब जाके पहुंचे, ज्यस्त से ये बेगम के मन में ज्यस्त था, ईर्ष्या था, ईर्ष्या के कारण उनको प्राण दंड देने के लिए योजना बनाई थी, ठीक उसी प्रकार ज्ञान दंड दे नहीं दिया गया तो फिर जाति से भ्रष्ट करके भी उनको ये भी प्राण हत्या की इस प्रकार का योजना बनाए थे। तो ये जब इस प्रकार हुआ तो वो वहाँ काशी में जब जाके पहुंचे तो काशी के पंडित लोग भी यही कहें गरम गरम घी पी करके हाँ प्रायश्चित स्वरूप जो पाप हुआ तो प्रायश्चित के लिए गरम गरम घी पीकर शरीर का शरीर को छोड़ दो। तो निर्णय नहीं कर पा रहे थे मुझे क्या करना है। ठीक उसी समय काशी में भगवान चैतन्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंचे तो उनके शरणागत हुए जब शरण लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिए जाओ वृंदावन जाओ और भगवान का नाम को सर्वदा भगवान का नाम लेते रहो। प्रायश्चित करने से प्रायश्चित करने के बाद यदि कोई भौतिक संसार में कोई प्राप्त हो जाता है प्रायश्चित भी कर लेता है फिर हाँ सामने विषय के सामने जब आ जाता है फिर वो पाप कर लेता है। ये प्रायश्चित कैसे हैं जैसे गांव के जो लोग हुए होंगे उन लोगों को पता होगा गांव में बांस होती है हाँ बांस होती है तो बांस वन में जब आग लगती है तो बांस वन आग के द्वारा पूरा अपना जल जाती है। ले बांस का जो धुरमुस है धुरमुस मालूम है ना समझ रहे हैं जो मूल है बांस का जो धुरमुस होती है वो जमीन में रहता है हाँ तो बांस का जो धुरमुस है वो पूरा पूरा आग में नहीं जल जाता भले आग लग जाता है लेकिन बांस जल जाता है। ले बांस का जो धुरमुस है वो आग में पूरा पूरा नहीं जलता है हाँ जैसे वो बरसात के पानी के संस्पर्श में आता है वो धुरमुस से फिर बांस का अंकुर उगने लगती है। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक जगत में जो प्रायश्चित है ये धुरमुस से अंकुर उगने की जैसे ही है। कभी कुछ हमें पाप हो जाता है मनु संहिता के अनुसार अलग अलग पाप की अलग अलग प्रायश्चित की विधान की गई है। अभी तो और इतना भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं अभी आयन कारण और कुछ हो गया कुछ ऐसा कुछ मानते नहीं है हाँ कोई मर्डर करता है तो उनको पैसा दे करके उनको खलास कर देते हैं। लेकिन एक बार यदि कोई व्यक्ति इसी जन्म में किसी को पाप करता है यदि मनु संहिता के अनुसार इसी जन्म में उनको फांसी दंड नहीं दिया जाता है यदि फांसी दंड नहीं दिया जाता है तो मृत्यु के बाद उनको कई बार उनका हत्या होती है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक जगत में किसी का हत्या की इसी जन्म में उनको हत्या फांसी दंड नहीं दिया जाता है तो मृत्यु के बाद उनको कई बार उसका हत्या होती है। इसलिए मनु संहिता के अनुसार ये व्यवस्था पहले किया गया था लेकिन आज कलयुग में इतने ऐसा व्यवस्था है हो गया है तो ये सब शास्त्र के सिद्धांत नियम कानून कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि प्रायश्चित करने से कि शरीर को दंड देने से कोई अपने पाप प्रवृत्ति को खत्म नहीं कर सकता लेकिन पातक अतिपातक महापातक किसी के द्वारा पाप हो गया अति पाप हो गया महापाप हो गया कुछ भी हो गया लेकिन जैसे वो भगवान का नाम स्मरण करता है जप करता है तुरंत तत्क्षणार्ध तक सारा पाप नष्ट हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश है खास करके विशेष करके कलियुग के मनुष्य के लिए स्वयं भगवान आकर के आप लोग के द्वारा पाप हो गया महापाप हो गया अति पाप भी हो गया कुछ भी हो गया जैसे भगवान का नाम का जप करते हो तुरंत तो सारे पापों से भगवान आपको छुड़ा लेते हैं। तो भगवान ने तो सुबुद्धि राय को आदेश दिन जाओ आप वृंदावन जाओ और वृंदावन में बैठकर भगवान का नाम लो यही आदेश दिया। लेकिन इस संसार की स्थिति ऐसा है हमारे भीतर प्रत्येक मनुष्य के भीतर दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके हमारे भीतर ईर्ष्या आ जाती है। हरिदास ठाकुर को जब उनका ऐश्वर्य फैल रही थी तो कितने उनको मारने के लिए भी ईर्ष्यान्वित होकर के उनको मारने के लिए भी कई उपाय किया गया। ईर्ष्यालु व्यक्ति और सांप ये दोनों में से किसी को चुनना है तो भले सांप को चुन लो लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को चुनना नहीं। कहा गया है ईर्ष्यालु व्यक्ति और सांप को ये दोनों में से किसी को चुनना है तो भले सांप को चुन लो लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को चुनना नहीं। सांप अपने आत्मरक्षा के लिए वो समय आने पर काटता है लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा हमेशा ही काटता है।
अपने वाणी के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा वो तकलीफ देता ही रहता है। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए सावधान रहना। बिच्छू का बीज कहाँ रहता है? उनका पूंछ में। और सांप का बीज कहाँ रहता है? उनका दांत में। मक्खी का बीज कहाँ रहता है? उनका सिर में। ये जहरीला, ये विषैला प्राणियों का बीज एक एक अंग में होती है, अंगों में होती है। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्तियों का बीज उनका अंग अंग में होती है। ये प्राणियों का बीज एक एक अंग में होता है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति का बीज ना अंग अंग में होती है। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति को सावधान, यदि हो पाता है वो ज्यादा छोड़ करके सदा सदा के चले जाओ। ईर्ष्यालु व्यक्ति को हमें ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहो। उसको कभी विश्वास नहीं कर, साफ को विश्वास कर सकते हैं लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को कभी विश्वास नहीं करना। और ये जो अजगर है, ये अघासुर है, वो ईर्ष्या की प्रतीक है। ये ईर्ष्या को सूचित कर रहा है। उनके भक्तों को देख करके, भगवान को देख करके उनके भीतर ईर्ष्या उत्पन्न हो गया। तो आखिर में यही सलाह दी जाती है, अनर्थ और ये माया हमारे जीवन में कभी भी प्रकट हो सकता है। ईर्ष्या एक अनर्थ है, भक्तों के जीवन में भी कभी कभी आ जाता है। ईर्ष्या भक्तों के जीवन में भी कभी कभी आ जाती है। ईर्ष्या एक अनर्थ है, ये कभी भी प्रकट हो सकती है। ये अजगर हमारे हृदय में कभी भी प्रकट हो सकती है, हमारा कृष्ण भक्ति को नाश कर सकती है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में हमें आदेश देते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास्तु, चिंता नहीं करो। प्रत्येक व्यक्ति का जो पाप कर्म का फल है ये भवबंधन है। प्रत्येक व्यक्ति का जो भवबंधन है उसका पाप कर्म का फल है ये भवबंधन है। भव कष्ट जो हमें प्रत्येक व्यक्ति भोग रहे हैं तो हमारा पाप कर्म का परिणाम है। ये संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, प्रत्येक के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट है। उसका सबूत ये है हम पाप किए हैं। और भगवान सलाह देते हैं कि हो गया, कुछ हो गया आप लोगों से, आ जाओ। और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का ये प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, भगवान का शरण में चले जाना चाहिए। यदि हमें भगवान और भगवान के भक्तों की आदेश को मान लेते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं, तब तो क्षणात अनेक जन्मों से जो संसार और आवागमी के द्वारा में जल रहे हैं, तुरंत हमारे जीवन में ठंडक आ जाती है। आज ऐसे एक दिन है, वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, ये वृंदावन दास ठाकुर श्रीवास पंडित के बड़े भाई एक थे, नलिनी पंडित जो नलिन पंडित के एक कन्या थी नारायणी देवी, और नारायणी देवी के गर्भ से ये वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ था। तो चैतन्य देव ये भौतिक संसार में प्रकट होकर के भगवत प्रेम वितरण कर रहे थे। ये भगवत प्रेम वितरण का शुरुआत ये नारायण, उस समय नारायण वृंदावन दास ठाकुर के माँ नारायणी देवी का 4 साल का उम्र थी, 4 साल के थे। अरे भगवत प्रेम वितरण का शुरुआत भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये नारायणी देवी से शुरू किए थे, अपने चबाए हुआ उच्चिष्ट को देकर के, चबाए हुआ पान का उच्चिष्ट को चैतन्य महाप्रभु को नारायण देवी को प्रदान करके उनका गर्भ में जो बालक थे वो बालक को आध्यात्मिक शक्ति को अपने उच्चिष्ट के द्वारा संचार कराए। चैतन्य महाप्रभु का ये भगवत शक्ति जो प्राप्त किए गर्भस्थ बालक, जब वो बाहर आए वो चैतन्य महाप्रभु का जो मुख्य इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है सारे जगतवासियों को पान कराए। क्यों ना वो चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट का सेवन किए थे, चैतन्य का मुखामृत को उन्होंने पान किए थे। वही मुखामृत को एक भक्त के मुख का जब अमृत बन जाता है वो इतने मीठा बन जाती है, इतने मधुर बन जाती है, उनका मिठास इतने बढ़ जाती है, इसी जन्म में हमें भगवद्धाम पहुंचाने के लिए सक्षम करा लेता। इसीलिए श्रीमद् भागवत का शुरू शुरू में निगम कल्प करु किसका सुख मुख अमृत, भगवान का संदेश को जब एक शुद्ध भक्त कहते हैं तो वो वाणी बद्ध जीव का हृदय को सारे कलमश को नाश करने के लिए समर्थ हो पाता है और भगवत धाम पहुंचाने के लिए वो योग्य बना देता है। वही वृंदावन दास ठाकुर आज के दिन में अप्रकृति थी डिसअपीयरेंस जो भी है, तो आज के दिन में वृंदावन दास ठाकुर का अप्रकट होकर के वो भगवत धाम चले गए। अब वृंदावन दास ठाकुर जब माँ के गर्भ में थे, उनका पिताजी का देहांत हो गया था, उनका पिताजी का नाम था वैकुंठ दास, वो एक ब्राह्मण थे। हाँ, जब बाहर आए जब जब माँ के गर्भ में थे और उनका नारायण देवी से उनका पिताजी का देहांत हो गया था, जब श्रीवास पंडित देखे कि अरे मेरा पुत्री मेरा उनका भाई का पुत्री थे तो अरे वो विधवा है और उनके गर्भ में बालक है, तो फिर श्रीवास पंडित प्रभु अपने घर में ले आए थे। और वृंदावन दास ठाकुर जब 5 साल की उम्र में थे तो वासुदेव दत्त के संरक्षण में तो माँ और पुत्र दोनों थे। और वासुदेव दत्त की शिक्षा दीक्षा में और उनके माँ के शिक्षा दीक्षा में वो चैतन्य भागवत रचना किए थे। जहाँ पर भगवत गीता समाप्त होती है वहां पर श्रीमद् भागवत शुरू होती है, और जहां पर श्रीमद् भागवत समाप्त होती है तो वहां पर चैतन्य चरितामृत शुरू होती है, और जहां पर चैतन्य चरितामृत शुरू होती है वहां पर चैतन्य भागवत शुरू होती है। तो समझ लीजिए ये चैतन्य भागवत क्या है, मीठा से मीठा से मीठा से कई मीठा हमें उनका अंदाजा लगाना है, लगा नहीं सकते। श्रील सुखदेव गोस्वामी का श्रीमद् भागवत क्या है, श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत क्या है, उसमें कोई गुटली नहीं है, ना कोई छिलका है ना कोई गुटली है, खाली जूसी जूसी रस ही रस है। सुखदेव श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो श्रीमद् भागवत प्रदान किए हैं उसमें कोई वो जूस में कोई गुटली नहीं है ना कोई छिलका है, खाली जूसी जूस है। मतलब क्या है, वन काइंड एक प्रकार का वो फ्रूटी है, फ्रूटी तो फ्रूटी को पीना सीखना चाहिए। हाँ, तो फ्रूटी को जो व्यक्ति पीना सीखता है तो वो उससे वो रस ले सकता है। फ्रूटी में क्या होता है, उनका थोड़ा कहाँ पर उनको तोड़ना है छेद करना है तो सब किसी को पता नहीं है, शहर के लोग जो है जानते हैं कहाँ पे वो स्ट्रॉ के द्वारा वो फ्रूटी का जूस को ले लेते हैं, कहाँ पर छेद करना है और स्ट्रॉ घुसाते हैं और फ्रूटी का जूस को सोस लेते हैं। तो जो बुद्धिमान है तो श्रीमद् भागवत से वो फ्रूटी वो जूस को रस को स्ट्रॉ ले सकता है। देखते हैं मौरा फूल के भीतर भगवान ने उनको ऐसे चीज दिया, सूंड दिया, वो सूंड को वो फूल के भीतर घुसाता है जैसे इंजेक्शन देते अपने सूंड को घुसाता है और फूल को बिना कुछ खराब किए हुए उस अपने सूंड को घुसाता है और वो फूल से जूस को रस को ले लेता है। ठीक उसी प्रकार ये भौरा के जैसे भक्तों को होना चाहिए। तो वो स्ट्रॉ को अपने स्ट्रॉ को भगवत भक्ति में कथा में लगा करके भौरा जैसे वो भागवत से रस को ले लेना चाहिए। और रसों में से रस श्री वृंदावन दास ठाकुर हमें चैतन्य भागवत के रूप में प्रदान किए हैं, और ये भागवत को यदि हमें पठन मनन करेंगे तो इसी जन्म में हमें चैतन्य महाप्रभु का कृपा को प्राप्त करके भगवत धाम में पहुंच सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री प्रभुपाल की जय। प्रेमानंदे। किसी का कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं, एनी कमेंट? धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।
निभाना हमने तो शरीर क्यों कष्ट उठाना, कभी कभी दूर लगता है जो भक्तों को कष्ट होता है फिर उसको साफ भी करो, जिसका भक्तों 10 बजे तक प्रसाद वैसे ही पड़ा, ये हमको दुख लगता है भक्तों को काम करता लगता है यही करता हूँ मैं भी 3-4 बजे तक अकाउंट में बैठता हूँ फिर सोने को मन करता सो जाता हूँ फिर लेक्चर सो है साथ खाने को भी मन करता थक जाता है शरीर
Thank you.